ओम शांति एंड गुड इवनिंग। मेरा नाम कमांडर घोषाल है। मैं भारतीय नौसेना ज्वाइन किया था 1975 में और 36 साल देश सेवा के बाद में 2011 में मैं रिटायर किया। और अभी मेरा सौभाग्य है ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ने का और कई जगहों में जाकर सेवाएं करने का, वेरियस फोर्सेस का। और इस शाम को मेरा सौभाग्य है दीपा बहन का आपको एक परिचय देने का। दीपा बहन जो है एजुकेशनली क्वालिफाइड है, बैचलर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। अभी ये विलेपार्ले ब्रह्म कुमारी सेंटर बॉम्बे से जुड़ी हुई हैं। ये बचपन से राजयोग से जुड़ी हुई हैं और इन्होंने अपना समर्पित जीवन लास्ट 25 वर्षों से ब्रह्म कुमारी संस्थान को दिया है और ये 25 साल कंटिन्यूअसली ये सेवा में जुड़ी हैं। ये जगह जगह वर्कशॉप्स लेक्चर्स देती हैं सेल्फ एम्पावरमेंट पे, जो आपका थीम है 4 दिन का, और राजयोग मेडिटेशन में। इनकी सेवाएं बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सोशल इंस्टीट्यूट जैसे लायंस क्लब, रोटरी क्लब एक्सेट्रा, मेडिकल इंस्टीट्यूट सब हॉस्पिटल्स में, फिर बिजनेस कम्युनिटी, विले पार्ले जो इनका सेंटर है वो बिजनेस विंग की तरफ से बहुत सेवाएं करता है, तो बहुत सारे बिजनेस जो फोरम्स हैं उनकी भी सेवा चलती है। बहुत सारे बैंक्स में इन्होंने प्रोग्राम दिया है, आर्मी वॉर कॉलेज माऊ में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, और वेरियस टॉपिक्स पे ये जगह जगह जाके सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के साथ जुड़ के और बिजनेस विंग के साथ जुड़ के जगह जगह लेक्चर देती हैं और बहुत लोगों को प्रेरणाएं देती हैं कि राजयोग मेडिटेशन से हम लोगों को क्या फायदे हो सकते हैं। तो अभी हम दीपा बहन सुनेंगे सेल्फ एम्पावरमेंट के बारे में, उनकी थोड़ी विचारधारा है। ओम शांति।
ओम शांति। आपको यहाँ आज आकर अच्छा लग रहा होगा, श्योरली अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। आज ही आप पहुंचे हैं तो थोड़ा जर्नी की थकान भी होगी, और आज जब से पहुंचे हैं तब से हमारा शाम का फंक्शन रहा बहुत अच्छे, हमें विचार भी सुनने को मिले, हमारी बड़ी दीदियों के भी प्रेरणाएं मिली, और साथ साथ भोजन का भी, आपने अभी भोजन भी लिया है, फिर रात्रि को थोड़ा थक गए होंगे तो लेक्चर तो करना इस समय ठीक नहीं होगा, नहीं सुनना भी डिफिकल्ट लगता है। तो यहाँ का ये ज्ञान सरोवर का वातावरण बहुत रिलैक्सिंग है, बहुत हमें निश्चिंत रहने का, एक रिफ्रेश होने का मौका यहाँ हमें मिलता है। तो इसलिए आज हमने सोचा कि थोड़ा आपस में हम इस सेल्फ एम्पावरमेंट, स्व सशक्तिकरण के बारे में अपने अनुभव के आधार से शेयरिंग करेंगे, ताकि ये 3 दिन जो हम यहाँ बिताने वाले हैं इस सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य, आध्यात्मिक सौंदर्य के वातावरण में, आप में से जो भी पहली बार माउंट आबू आए हैं तो नेचुरली यहाँ का वातावरण प्रकृति के अनुसार भी बहुत सुंदर है, आप यहाँ के वाइब्रेशंस फील कर रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से भी बहुत निश्चिंत बना देते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आपको अपने कारोबार और जो भी व्यस्त जीवन से आप यहाँ आए वो याद आ रहा है, फ्री हो गए नहीं, तो 3 दिन के लिए जैसे छुट्टी में है नहीं, तो शरीर से भी छुट्टी और मन से भी छुट्टी नहीं, क्योंकि ये 3 दिनों के लिए आपको जो बहुत सुंदर बातें सुनने का मौका मिलेगा, एक सुंदर यात्रा है। जैसे आज के हमारे गेस्ट ने बहुत अच्छी बात बताई कि आज सुबह से जब से वो यहाँ इस प्रांगण में आए हैं उनको महसूस हुआ उन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा है। तो स्व सशक्तिकरण वास्तव में एक सुंदर यात्रा है, और इस यात्रा में हम अपने साथ हैं। तो ऐसे तो कहा जाता है कि हम सदा ही अपने साथ हैं, लेकिन फिर भी आज के व्यस्त जीवन में, विशेष करके मैं बॉम्बे से हूँ तो वहाँ के वायुमंडल को देखती हूँ, सेंट्रल लाइफ में भी हम देखते हैं, तो बहुत बिजी रहने का एक अनुभव आपको होगा। नहीं, आप भी जहाँ कारोबार में हैं, सुबह से रात्रि तक प्लान्ड एक शेड्यूल है, ऐसा है, सुबह से रात तक रूटीन है, तो उस प्लान्ड शेड्यूल के अनुसार चल रहे हैं। तो उस रूप से अपने लिए टाइम निकालना, अपने साथ बैठने का, अपने आप के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है आपको? मिलता है? क्या अनुभव है आपका? मिलता है? नहीं मिलता है? चाहते जरूर हैं, नहीं, क्योंकि ऐसे ही स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में, आध्यात्मिक ज्ञान की बातों के बारे में कभी ना कभी हम टीवी के द्वारा कुछ सुनते हैं, कोई हमारे मित्र फ्रेंड्स आदि से सुनते हैं ब्रह्म कुमारी के बारे में और कोई भी संस्था से जुड़ी हुई आध्यात्मिक बातें, तो हमें अच्छा लगता है, मन में विचार जरूर आता है कि हमें थोड़ा समय निकालना चाहिए इसके लिए। नहीं, ऐसा मन में कभी विचार आया था आपके, क्योंकि इन बातों के बारे में थोड़ा समय निकालना चाहिए, ऐसा लगा? मैं इसलिए आपसे बातचीत कर रही हूँ क्योंकि सिर्फ आप सुनेंगे तो क्या होगा, थके हुए हैं तो सुनते सुनते क्या होगा, विश्राम में चले जाएंगे। नहीं, तो बातचीत करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो आपको मन में ऐसा आया कि हमें कभी ना कभी इस चीजों के लिए कभी टाइम निकालना चाहिए, मेडिटेशन है, योगा है, इसके लिए कुछ टाइम निकालना चाहिए, लेकिन वो टाइम बिजी शेड्यूल में से निकाल नहीं पाए। तो आज जैसे हमारी दीदी ने बताया आपको कि आप सिलेक्टेड हैं परमात्मा के, तो आपको सिलेक्ट करके ईश्वर ने अपने साथ टाइम बिताने के लिए मौका दिया है। तो ये टाइम हमारा पर्सनल टाइम होगा, ये 3 दिन का समय जहां हम अपने साथ बिताएंगे, जहां हम अपने बारे में जानेंगे भी और अपनी इस जीवन यात्रा को और सुंदर और अनुभवी और श्रेष्ठ कैसे बनाएं उसके बारे में अपने लिए एक प्लान भी बनाएंगे। ठीक है, ऐसा करेंगे? क्योंकि ये यात्रा यहां तक सीमित नहीं रखेंगे ना, वापस हम कारोबार में 3 दिन के बाद जाएंगे तो यात्रा कंटिन्यू करनी है। आपको क्या लगता है, कंटिन्यू करना है? कंटिन्यू करना है, इस अनुभूति को, इस खुशी को, इस रिफ्रेशमेंट को, इस रिलैक्स फीलिंग को वहां भी ले जाना है आपके कारोबार में। तो हम ये 3 दिनों में जो भी अनुभव करेंगे उसके साथ साथ अपने लिए कुछ प्लान भी बनाएंगे, स्व के लिए योजना भी बनाएंगे कि ये हमारा स्व सशक्तिकरण की ये जो सुंदर यात्रा है ये सदा हमारी कंटिन्यू होती रहे, हर दिन हम अपने आप के साथ और अच्छा फील करें, अपने आप के साथ और रिलैक्स फील करें, अपने प्रति हर दिन हमारी जो भावनाएं हैं, शुभ भावनाएं जिसको हम स्वमान कहते हैं, वो और मजबूत होता जाए। क्योंकि सुबह से रात्रि तक हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है आपको लगता है? क्योंकि आज तक हमने समय हमेशा किसके लिए दिया, सोचने के लिए कि और हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे साथी हैं, क्योंकि कारोबार में है तो संगठन में काम करना है, तो इसलिए हम देखते हैं कि अपने बारे में हम क्या सोच रहे हैं इसका हमें ध्यान नहीं रहा। यहाँ ये 3 दिनों में आपको बहुत सुंदर प्रेरणाएं भी मिलेगी, समय भी मिलेगा कि हम सारा दिन अपने आप के बारे में क्या सोच रहे हैं और उसको हम दिशा कैसे दें। क्योंकि स्व सशक्तिकरण का पहला पहलू है कि हम अपने बारे में हमेशा लाइट रहें, पॉजिटिव रहें, अपने आप से सदा खुश रहें। ये वास्तव में बहुत सिंपल सा लगता है लेकिन बहुत जरूरी है हमें अपने आप को पूछना, क्या हम अपने आप के साथ खुश हैं? एम आई हैप्पी बींग माई सेल्फ? जरूरी है पूछना अपने आप के साथ, आपको क्या लगता है जरूरी है? अपने आप के साथ खुश रहना जरूरी है? खुश रहना जरूरी है? रहना जरूरी है? पीछे वाले क्या समझते, जरूरी है? जरूरी है। तो हम सारा दिन कारोबार तो करते हैं लेकिन अपने आप के साथ कितना खुश रहते हैं, लाइट रहते हैं, अपने आप के बारे में कितनी हमारी भावनाएं जो है, विचार जो है वो सकारात्मक है, वो ऊर्जावान है, वो अपने आप को और सशक्त करने में मदद कर रही है। क्योंकि पहला पहलू ही है कि हम अपने आप को कितनी ऊर्जा दे रहे हैं, शक्ति अर्थात पावर, स्ट्रेंथ, बल। तो पहला पल या पहला जो लेवल है सशक्तिकरण का, हम अपने आप को कितनी ऊर्जा सारे दिन में दे रहे हैं। क्योंकि जो हम विचार करते हैं, या वो विचार हमें शक्ति दे सकता है या वो विचार हमारी शक्ति को कम कर सकता है, क्षीण कर सकता है। तो सारा दिन हम कौन से ऐसे विचार कर रहे हैं जिससे हम अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर आपको ये दिनों में समय भी मिलेगा चेक करने का, लेकिन आपको बहुत सुंदर टूल्स यहाँ मिलेंगे कि कैसे हम सारा दिन अपने आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाते जाएं, अपने स्वयं की जो ऊर्जाएं हैं, हमारे अंदर की गुण और शक्तियों की ऊर्जाएं हैं, उसको हम सारा दिन कैसे बढ़ाते जाएं, यूज भी कर रहे हैं और उसकी भरपूरता या उसकी प्रगति भी हम कैसे करते जाएं। तो जब हम अपने आप से ये प्रश्न पूछते हैं, क्या हम अपने आप से खुश हैं, या हम अपने आप को अपने स्वयं के इस रोल को, कारोबार को, जीवन को देखकर हैप्पी फील करते हैं, एम आई हैप्पी बीइंग मायसेल्फ, तो क्या उत्तर आता है, क्या उत्तर आता है, खुश हैं, सदा खुश हैं। हम यहाँ रोज हमारी स्पिरिचुअल स्टडी हमारी भी होती है रेगुलर, क्योंकि इसको आपने नाम देखा ही होगा कि यहाँ विश्वविद्यालय लिखा हुआ है, ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो यहाँ हम सब स्टूडेंट्स हैं, तो हम सब की रोज सुबह को एक घंटे के लिए हमारी स्पिरिचुअल स्टडी होती है और फिर सारा दिन उसी पर हमारा प्रयोग होता है। तो उसमें हमें भी ईश्वर हमेशा ये चेकिंग कराते हैं कि आप खुश हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सदा खुश हैं। तो जब हम अपने आप को ये पूछते हैं कि हम सदा अपने आप से खुश हैं, एम आई हैप्पी बीइंग मायसेल्फ एवरी मोमेंट, तो क्या उत्तर आता है, सदा खुश है, नहीं। तब फील होता है कि नहीं, कोई कोई ऐसी सिचुएशंस हैं, और वो खुशी के पल ज्यादा हैं, या अपने आप के बारे में जब हम देखते हैं तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन है, थोड़ा लो फीलिंग्स है, थोड़ा डिप्रेसिव फीलिंग्स है, ये फीलिंग है कि ये ठीक नहीं हुआ हमारे साथ, ये अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये फीलिंग्स ज्यादा है या खुशी की फीलिंग्स ज्यादा है। तो जब हम चेक करते हैं तब हमें पता पड़ता है कि हमारे अपने साथ भी जो अंतर में हमें अपने साथ खुशी होनी चाहिए उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा गैप है। तो उसको हम कैसे फिल करें, कैसे हम हर पल अपने जीवन से बहुत खुश रहें, अपने आप से बहुत खुश रहें। जरूरी है अपने आप से खुश रहना, बहुत जरूरी है, क्योंकि 24 घंटे हम किसके साथ हैं, अपने आप के साथ हैं। तो हम अपने बारे में क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण हुआ, बहुत जरूरी हुआ, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं अपने बारे में वो ऊर्जा कहाँ आ रही है, हमारे जीवन को प्राप्त हो रही है। इसलिए हमारे जीवन को सारा दिन हम अपने आप को रिफ्रेश करते रहें, ऊर्जावान रखें, उसके लिए हमारा अपने बारे में क्या सोचना है, उसको हम और सुंदर कैसे बनाएं, उसको हम और श्रेष्ठ कैसे बनाएं, नहीं। तो हम देखते हैं कि जैसे हम कई बार किसी अपने मित्र को याद करते हैं, हमारे पास थोड़ा टाइम होता है तो हमको लगता है कि हम किसी मित्र से बातचीत करें, तो कोई ना कोई व्यक्ति याद आ जाता है, हम उससे शायद फोन पर बात कर लेते हैं क्योंकि आजकल हमारे पास साधन है, हम उससे स्काइप पर बात कर लेते हैं, दूर है व्यक्ति, या अगर हमें मौका है तो हम उससे मिलने जाते। तो जिनके साथ हमें अच्छा संबंध है हमारा, जो हमें अच्छे लगते हैं, कोई मित्र संबंधी, उनके साथ जब हम टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें कैसा लगता है, अच्छा लगता है, फिर उस समय हम अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करते हैं। समय का महत्व मालूम पड़ता है उस समय, फ्रेंड के साथ जब बात कर रहे हैं तो पता पड़ता है, नहीं, कहां समय बीत जाता है पता ही नहीं पड़ता है, नहीं, फिर याद आता है, नहीं अभी हमें वापस जाना है, कारोबार है, फोन पे भी बात कर रहे हैं, पता ही नहीं पड़ता है, टाइम का महत्व नहीं रहता है। तो हम इंजॉय करते हैं उन लोगों से बात करने के लिए या उन लोगों से टाइम स्पेंड करने के लिए जिससे हमें प्यार होता है, जिनकी कोई विशेषता हमें अच्छी लगती है। नहीं, कोई गुण अच्छा लगता है उनका, कोई व्यवहार अच्छा लगता है, उनकी एटीट्यूड अच्छी लगती है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। हमें अपने साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है? हम जब अपने साथ एक मिनट साइलेंस में बैठ जाते हैं तब अच्छा लगता है, हम एंजॉय करते हैं साइलेंस को, या एक मिनट के बाद क्या होता है, लगता है अब क्या करना है, नहीं किससे बात करना है, क्या कर रहे हैं, नहीं मन इधर उधर चला जाता है। तो हम अपने साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं, नहीं। तो आज हम देखते हैं कि हम वो साइलेंस में अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, नहीं जितना हम करना चाहिए। तो अपने साथ भी हम टाइम तब एंजॉय करेंगे स्पेंड करना जब हम अपने आप को ऐसा श्रेष्ठ बनाएंगे, जैसे हम औरों के साथ टाइम कब स्पेंड करते हैं, जिन जो हमें अच्छे लगते हैं, जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, जिनसे हमें कुछ प्रेरणा मिलती है, जिनकी कोई गुण और विशेषताएं हमें प्रिय लगती है, हमें उनको सीखने का, उनको अपने जीवन में लाने का एक हमारा शुभ संकल्प होता है। ऐसे ही जितना हम अपने आप को सुंदर बनाते जाते हैं, श्रेष्ठ बनाते जाते हैं, तो क्या होता है, हम अपने साथ भी टाइम स्पेंड करना एंजॉय करना शुरू करते हैं, नहीं। हमें अपने बारे में जब वो स्वमान की फीलिंग होती है, रिस्पेक्ट की फीलिंग होती है, हम एंजॉय करते हैं अपने लाइफ को, तो हमें अपने साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। फिर साइलेंस में हम थोड़ा स्पेंड कर सकते हैं, फिर मेडिटेशन की यात्रा को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अपने साथ जब हम टाइम स्पेंड करते हैं तो क्या होता है, उससे क्या होता है, जब हम फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो क्या फायदा होता है, क्या फायदा होता है, प्रसन्नता मिलती है। आपके कारोबार में आपका टीम है, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं तो क्या होता है जी, कोऑर्डिनेशन अच्छा था, संबंध अच्छे बनते। जब हम समय किसी के साथ स्पेंड करते हैं, फैमिली में या वर्क पर, तो क्या होता है, आपस में हमारे संबंध उनके साथ और अच्छे बनते हैं, मधुर बनते हैं, क्योंकि शेयरिंग होता है। कई बातें अंदर मन में रखी हुई होगी, टाइम आपने फैमिली के साथ स्पेंड किया, चाइल्ड के साथ स्पेंड कर लिया, नहीं उनके साथ कहीं घूमने चले गए, रिलैक्स होकर बातचीत की, तो क्या हो जाता है, उनके साथ संबंध हमारे कैसे हो जाते हैं, और मजबूत हो जाते हैं, और इजी हो जाते हैं। हम अपने साथ जितना समय स्पेंड करेंगे उतना हमारा अपने साथ संबंध क्या होगा, बहुत अच्छा होता जाएगा। हम अपनी बात मानना शुरू करेंगे, नहीं, क्योंकि आज हमें लगता है कि हम अपने मन को कई बार कुछ संकेत देते हैं कि ये करना ठीक है, ये करना ठीक है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हमारा मन हमारी बात नहीं स्वीकार करता है, नहीं। तो हमारा अपने साथ संबंध बहुत अच्छा हो जाता है। अगर हमारा अपने साथ संबंध अच्छा है तो क्या होगा, अपना स्वयं के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा है, हम अपने साथ बहुत खुश हैं, कंफर्टेबल हैं, हैप्पी हैं, तो क्या होगा, डिसीशन मेकिंग में हमें मदद मिलेगी, और फिर हम जहां भी अपना टाइम स्पेंड करेंगे वहां क्या करेंगे, फैमिली में हैं, वर्क पर हैं, हम अपने आप के साथ बहुत खुश हैं, हमारा अपने आप के साथ संबंध बहुत अच्छा है, हम बहुत कंफर्टेबल हैं, रिलैक्स्ड हैं, हम बहुत हैप्पी हैं, तो क्या होगा, उससे हम जहां भी कारोबार में भी होंगे या हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे वहां क्या होगा, क्या हम कर सकेंगे, कार्य इजी होगा, और वहां क्या कर सकेंगे हम जी, औरों के साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे, और अपने साथ अगर हम कंफर्टेबल हैं, रिलैक्स्ड हैं, हैप्पी हैं, तो हम जहां भी काम करेंगे, कारोबार करेंगे, जो भी रोल हम प्ले करेंगे वहां क्या होगा जी, कंफर्टेबल फील करेंगे, हम वहां भी ऊर्जा दे सकेंगे, नहीं, क्योंकि हम अपने आप में ऊर्जावान हैं, तो क्या होगा, हम अपने कार्य में भी ऊर्जा दे सकेंगे, अपने सहयोगियों को भी ऊर्जा दे सकेंगे, उनको भी उमंग उत्साह दे सकेंगे, सहयोग दे सकेंगे, परिवार को भी दे सकेंगे। तो स्व सशक्तिकरण की जिम्मेवारी अगर हमने ले ली तो क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, हम हर रोल में जो भी हम पार्ट बजा रहे, रोल बजा रहे, जो कारोबार हम कर रहे हैं, हम अपने ड्यूटी पर हैं, वहां भी हम अपने कार्य को, अपने संगठन को ऊर्जावान बना सकेंगे। और जहां ऊर्जा है वहां क्या होता है, एनर्जी जहां है वहां क्या होता है, कार्य इजी हो जाता है, उमंग उत्साह खुशी होती। जहां ऊर्जा की कमी होती है वहां कार्य क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है, वहां जिम्मेवारी, वहां कार्य थोड़ा प्रेशर लगता है, बोझ लगता है, डिफिकल्ट लगता है। लेकिन जहां ऊर्जा है वहां कार्य क्या हो जाता है, सहज हो जाता है। नहीं, आप स्पोर्ट्स देखते हैं तो वहां भी मेहनत है ना, लेकिन क्या होता है, ऊर्जा है, खुशी है, सबको उमंग उत्साह है, तो कार्य इजी हो जाता है। तो फर्स्ट लेवल सशक्तिकरण का क्या है, स्व सशक्तिकरण, मैं अपने बारे में क्या सोच रही हूं, मैं अपने आप को कौन सी ऊर्जा दे रही हूं। दूसरा स्व सशक्तिकरण का सेकंड लेवल है कि हम आपस में, संगठन में एक दूसरे के साथ हमारे संबंध कितने शक्तिशाली है, कितने शुभ भावना वाले हैं। क्योंकि ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, होता है, होता है। हम जिनसे भी मिलते हैं तो क्या होता है, हम ऊर्जा देते भी हैं और ऊर्जा प्राप्त भी करते हैं, प्राप्त करते हैं ना। और जहां हम कार्य कर रहे हैं, जिस टीम के साथ हम कार्य कर रहे हैं, उसमें तो कितना समय हम उन लोगों के साथ कार्य कर रहे हैं, या तो हम जिम्मेवारी हम दे रहे हैं लोगों को, या हमारे सीनियर्स हैं तो उनसे जिम्मेवारी, हम उनके इंस्ट्रक्शन सुनकर हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। तो संगठन होगा ना, तो उस संगठन में भी सारा समय हम ऊर्जा की लेन देन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम सारा दिन, हमारा ऐसा संबंध हो जिससे हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती जाए, तो क्या होगा, नहीं, तब हम भी सारा दिन अपने आप को हैप्पी और इजी रख सकते हैं। तो हम कौन सी ऊर्जा दें ताकि हमें ऊर्जा सकारात्मक हमेशा मिले। तो हम सारा दिन जिनके साथ भी लेन देन करते हैं, उसमें भी हम अपने लेन देन को ऐसे कैसे सुंदर बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं कार्य करते हुए, कि हमें हरेक से सकारात्मक ऊर्जा मिले, हरेक से हमें ब्लेसिंग मिले, हरेक से हमें खुशी मिले, हरेक से हमें एक अंदर से शुभ भावना मिले। तो उससे भी हम सारा दिन क्या होता है, हम अपने आप को ऊर्जावान रख सकते हैं। तो अपना सशक्तिकरण करना, ये किसकी जिम्मेवारी हो गई, हमारी। अगर हमने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ली तो क्या होगा, तो क्या होगा, फिर हमारा इस पर ध्यान होगा कि सारा दिन हम कौन सी ऊर्जाएं अपने आप को दे रहे हैं और कौन सी ऊर्जाओं की लेन देन औरों के साथ कर रहे हैं। आज क्या है, स्व सशक्तिकरण आवश्यक है, लेकिन उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है, नहीं, वातावरण ऐसा है, सिचुएशंस ऐसे हैं, जिनके साथ हम संपर्क में आते हैं उनका व्यवहार ऐसा है, तो हम क्या करें, कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड हैं, कहीं ना कहीं परेशान हैं, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन यहां हम राजयोग से बहुत सुंदर परमात्मा हमें ये जिम्मेवारी का अनुभव कराता कि स्व सशक्तिकरण किसकी जिम्मेवारी है, मेरी है। तो फिर क्या हो जाता, हमारा अपने ऊपर अटेंशन आ जाता, और फिर हम देखते हैं कि शक्ति जो है उसका स्रोत कौन, नहीं, क्योंकि हम रोज सारा दिन कार्य कर रहे हैं, संबंध में आ रहे हैं, तो शक्तियों को यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, नहीं, सुबह से रात्रि तक हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो शक्ति क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, नहीं। तो इसलिए सुबह से रात्रि तक जैसे हम शारीरिक शक्ति यूज कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, सारे दिन में हमने एक सिस्टम क्रिएट किया जिससे शारीरिक शक्ति जो है उसका सशक्तिकरण होता जाए। तो सुबह को हम उठते ही पहले क्या करते हैं, शरीर को स्वच्छ कर लेते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ शरीर को भोजन, नाश्ता हम करते हैं, चाय लेते हैं, फिर थोड़े समय के बाद क्या करेंगे, दोपहर को भोजन ले लेंगे, नहीं, फिर अभी रात्रि को हमने क्या किया, शाम को चाय ले लिया, रात्रि को क्या किया, अभी हमने भोजन स्वीकार किया, फिर अभी एक लेक्चर के बाद हम रूम में जाएंगे, फिर क्या करेंगे, विश्राम करेंगे, उससे भी शरीर को ऊर्जा मिलती है ना। तो हमने इस सारे रूटीन में, अपनी सारी दिनचर्या में सिस्टम इंटीग्रेट कर लिया, जिससे शरीर को हम सारा दिन क्या करें, ऊर्जा देते रहे, शरीर के द्वारा ऊर्जा यूज हो रही है तो उसको हमें रिस्टोर करना है। तो हमने ये अपने डेली रूटीन में सिस्टम इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रेट कर लिया ना। चलो कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी ड्यूटी में आपको बहुत प्रेशर हो, तो दोपहर का भोजन समय पर नहीं हुआ, तो क्या करेंगे आप? थोड़ा लेट भी आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ ले लेंगे, सैंडविच ले लिया, कुछ ले लिया, चाय ही ले लिया। लेकिन कुछ समय के बाद हमें शरीर द्वारा भी सिग्नल प्राप्त हो जाता है कि कुछ लेना जरूरी है। क्यों लेना जरूरी है? ऊर्जा के वजह से। उसी रूप से हम देखते हैं कि आत्मा भी सुबह से लेकर रात्रि तक ऊर्जा यूज कर रही है, मन भी सारा दिन यूज कर रहे हैं, नहीं? तो हम देखते हैं कि इसका सशक्तिकरण करना, इसको हमने अपने डेली रूटीन में इंटीग्रेट किया है, इसका कोई सिस्टम बनाया है, जरूरी है? जरूरी है। आप क्या महसूस करते हैं? जरूरी है, जरूरी? पीछे वाले सुन रहे हैं या विश्राम में चले गए? नहीं सुन रहे हैं, अच्छा। तो जरूरी है आपको लगता है? जरूरी है, क्योंकि कहां ना कहां आत्मिक ऊर्जा में अगर कमी महसूस होती है तो क्या हो जाता है, उसका सिग्नल क्या है? आत्मिक ऊर्जा हमारी थोड़ी कम हो गई। जैसे शारीरिक ऊर्जा अगर हम कम हो गई है तो उसका सिग्नल क्या है? हमें शरीर सिग्नल देता है ना कि अभी थोड़ा कुछ खा लेना चाहिए, नहीं तो चक्कर आ रहा है, वीकनेस हो रहा है, बैठना है, कुछ खा लेना चाहिए, तो फिर एनर्जेटिक लगेगा, नहीं? तो उसी रूप से हमारी आत्मिक ऊर्जा जब कम हो जाती है तो क्या महसूस होता है, चिड़चिड़ापन। फिर जो बाह्य परिस्थितियां हैं, लोगों के जो बातें हैं, व्यवहार है, वो जो ठीक नहीं होता है तो क्या होता है, वो चीजों का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, अफेक्टेड हो जाते हैं। प्रेशर थोड़ा वर्क में आ जाएगा, जैसे हमने प्लान किया वैसे नहीं होगा, लोग जो है थोड़ा सा ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हमने ठीक से इंस्ट्रक्शन दिया फॉलो नहीं हुआ, हमने कम्युनिकेट किया समझा नहीं, मिसअंडरस्टैंड हुआ, जो भी बातें होती वो फिर हमें क्या करती है, अफेक्ट करती है। माना आत्मिक ऊर्जा कम है, तो आज सारा दिन हम क्या महसूस करते हैं, जब भी अफेक्ट होते हैं तो क्या होता है, फिर रिएक्शन आ जाता है। जब हमारी आत्मिक ऊर्जा अच्छी है तो कोई भी चीज ऊपर नीचे बाहर से होती है तो हम क्या कर पाते हैं, ठीक से उसको डील कर पाते, रिस्पॉन्ड कर पाते। तो आज अगर हम चेक करें सुबह से रात तक, तो कितना समय हम रिस्पॉन्स मोड में है, कितना समय रिएक्शन मोड में, कौन सा मोड ज्यादा है? रिएक्शन मोड, क्योंकि ऊर्जा क्या है, कम होती जाती। फोन भी हम लेते हैं रोज सुबह को, ध्यान क्या करते हैं सुबह को, या तो रात्रि को ही चार्जिंग पर रख लेते हैं, रखते हैं ना। अच्छा जल्दी जल्दी में आप भूल गए तो क्या करेंगे, आप साथ में क्या रखेंगे, चार्जर, या तो एक आप अपने गाड़ी में रख लेते हैं, एक घर में है, एक आप जहां आपका पोस्टिंग है वहां है, नहीं? फिर भी थोड़ा गैप हो सकता है ट्रैवलिंग में, तो साथ में क्या रखते हैं, हम पावर बैंक भी रखते हैं, नहीं? क्यों रखना पड़ता है ये सब? क्योंकि हमें मोबाइल को यूज करना है सारा दिन, उसका चार्ज रहना बहुत आवश्यक है। चार्ज नहीं है तो उसमें जितनी भी जानकारी है उसका कोई उपयोग हम नहीं कर सकते, उसमें जो भी हमारे इंफॉर्मेशन है, कारोबार संबंधित हमारा सारा जो रिसोर्सेज है उसका उपयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज नहीं। तो आत्मा के अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज है, गुण है, शक्तियां हैं, लेकिन उसको यूज करने के लिए क्या करना होगा, उसको चार्ज रखना होगा। तो मोबाइल को भी चार्ज रखने का सिस्टम इंटीग्रेट कर लिया, आत्मा के लिए हम भूल गए हैं, ना इसका महत्व। क्यों चीज इसको भूल गए? क्योंकि इसका महत्व नहीं समझा, इसको हमने अनुभव नहीं किया, इसको जाना नहीं। तो ये हम कैसे अपने डेली रूटीन में इंटीग्रेट कर ले, ताकि सुबह से रात तक आत्मिक ऊर्जा भी चार्ज रहे। तो फिर क्या होगा, जैसे हमने शरीर की ऊर्जा को सुबह से रात्रि तक चार्ज रखा, अगर आत्मा की ऊर्जा को भी सारा दिन चार्ज रखा तो क्या होगा, हम अपने डेली रूटीन को अगर देख रहे हैं सुबह से रात्रि तक, तो उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या डिफरेंस फील करेंगे, जी चार्ज्ड फील करेंगे और इम्प्रूवमेंट आएगा और जी एक्टिव रहेंगे और जी और क्या लगेगा रहेगा इम्पैक्ट क्या रहेगा डिफरेंस क्या फील रहेंगे तो हम देख सकते हैं कि वो डिफरेंस जो है उसमें हम अपने आप को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे उसी सिचुएशंस को उन्हीं बातों को कैसे हम डील करेंगे हम फिजिकली हमारे पास इतना समय नहीं होता है जो हम हर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें उतना कारोबार में भी हम हर चीज को उतना महत्व देते हैं लेकिन अगर हम स्पिरिचुअली आत्मिक रूप में चार्ज होंगे तो जितना भी समय हम जहां होंगे हम उसको बेस्ट टाइम दे पाएंगे तो ये दोनों ऊर्जाओं को हमें चार्ज रखने की जरूरी बैलेंस्ड जरूरी है तो ये तीन दिन हमें मौका क्या मिल रहा है एक बहुत सुंदर हमें परमात्मा प्लान दे रहा है कैसे हमें ये प्लान करके अपनी डेली लाइफ को सारा दिन हम आत्मिक ऊर्जा से अपने आप को चार्ज रखें तो आत्मा में कौन से वो गुण हैं कौन सी शक्तियां हैं कैसे आत्मा अपने आप को चार्ज रखती है वो बहुत सुंदर हमें राजयोगा के लेसन्स में कल सुबह से लेकर आपको बहुत सुंदर बातें जो हमारा मूल ज्ञान है राजयोगा का वो आपको हर दिन हर बात को रिवील किया जाएगा बहुत सुंदर रहस्य आध्यात्मिक ज्ञान के आपको बताए जाएंगे और बहुत सुंदर तीन दिनों में आप फिर अपने लिए एक प्लान बना सकेंगे ताकि ये चीज फिर आपके डेली लाइफ में आपको इंटीग्रेट करना होगा डेली लाइफ में अगर इंटीग्रेट नहीं किया होगा तो क्या होगा फिर वो गैप वापस फील होगा यहां तीन दिन आप चार्ज्ड फील करेंगे सशक्तिकरण लेकिन फिर वापस जाएंगे तो क्या होगा फिर गैप होगा नहीं तो इसलिए ये तीन दिनों को आप एक बहुत सुंदर यात्रा एक बहुत सुंदर रिट्रीट के रूप में अनुभव करेंगे जहां परमात्मा ने आपको अपने लिए टाइम दिया है नहीं ये बहुत बड़ी गिफ्ट है बहुत बड़ी गिफ्ट समय तो बहुत सुंदर गिफ्ट है और बाकी सब गिफ्ट्स तो क्या है वो हम फिर से यूज कर सकते हैं स्थूल चीजें ना फिर से हमें टाइम वो चीज प्राप्त कर सकते हैं लेकिन समय की गिफ्ट तो बहुत वैल्यूएबल है ये समय जो हमें मिला है ये फिर से समय ये ऐसा नहीं मिलेगा तो ये तीन दिनों में आप बहुत अपने आप के साथ एंजॉय करेंगे और अपने लिए ये यात्रा को अनुभव करेंगे भले आप संगठन में हैं आपको बहुत अच्छा टाइम मिलेगा शेयरिंग करने का लेकिन जो भी आप सुनेंगे उसको अपने पर्सनल लाइफ में उसको अपने पर्सनल डेली लाइफ में आप इंटीग्रेट कैसे करना है उसे कैसे क्या कौन सी बातें सीखना है और कैसे उसको प्रैक्टिकल अपने लाइफ में उतारना है उसके बारे में आप जरूर चिंतन करेंगे उसको डेली लाइफ में ले जाएंगे तो क्या होगा उसका बहुत सुंदर फायदा होगा तो ये तीन दिन आपने अपने लिए दिए हैं और परमात्मा ने भी आपको ये बहुत सुंदर गिफ्ट दी है आपको यहाँ निमंत्रण दिया है अपने लिए ये सुंदर समय हम बिताएंगे तो जितना हम अपने सुंदरता को अपने ओरिजिनल वर्च्यूज को महसूस करते जाएंगे तो वो क्वालिटी टाइम क्वालिटी एक्सपीरियंसेस होगा मुझे एक बहुत अच्छी कहानी याद आ रही है और ये कहानी मुझे भी बहुत अच्छी लगती है एक ओस की बूंद की कहानी है ड्यू ड्रॉप तो ओस का बूंद आप जानते ड्यू ड्रॉप्स नहीं तो फेरी टेल्स आदि नहीं बच्चों की कहानी में हम ये ड्यू ड्रॉप्स के बारे में सुनते हैं तो एक बहुत सुंदर ड्यू ड्रॉप कहानी है इसलिए ओस की बूंद जो है वो बोल सकती है तो ये बहुत सुंदर ड्यू ड्रॉप है जो अभी अभी आकाश से नीचे उतरा है और जैसे ये बूंद एक सुंदर वृक्ष के ऊपर आता है एक प्लांट के ऊपर एक सुंदर लीफ के ऊपर और ये ओस का बूंद बहुत सुंदर है बहुत शुद्ध है तो उससे जैसे सूर्य की किरणें वहां फैल रही है तो वो चमक रहा है तो अपने आप को देखकर भी बहुत खुश होता है कि मैं बहुत सुंदर हूं अपनी यात्रा आरंभ कर रहा है तो वो ओस का बूंद उस वृक्ष से नीचे जमीन पर आ जाता है गिर जाता है और जैसे ही वो अपनी यात्रा वहां आरंभ करता है तो आसपास का वायुमंडल जो है उसको देखने में बहुत आनंद आता है तो वहां बहुत सुंदर रंग के फूल खिल रहे थे और वो बहुत सुंदर ऐसे पिंक कलर था, तो वो रंग देखकर वो उसका बूंद जो है वो आकर्षित हो जाता है, ड्यू ड्रॉप, और वो जैसे ही उस रंग के बाजू में दूर चला जाता है वहां उस फूल को देखने के लिए, तो वो उससे बातचीत करना शुरू करता है उस फूल से, और कहता है कि आपका तो बहुत रंग सुंदर है। तो वो फूल उसको कहता है कि आप तो स्वयं इतने शुद्ध हो, फ्रेश हो। तो कहता है हाँ, लेकिन मुझे आपका रंग बहुत अच्छा लगा, मुझे थोड़ा रंग दोगे? तो फूल कहता है जरूर मैं रंग दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा रंग दूंगा, तुम मुझे अपनी थोड़ी फ्रेशनेस दे देना, शुद्ध है ना वो। तो वो कहता है ठीक है, तो एक एक्सचेंज हो जाता है। तो ड्यू ड्रॉप जो है वो उसका बूंद अपनी फ्रेशनेस दे देता है, शुद्धता दे देता है, और वो बहुत सुंदर फूल जो है वो अपना रंग दे देता है। अब वो ड्यू ड्रॉप और भी सुंदर फील करता है, खुश होता है और अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहा है। तो वहां बहुत सुंदर और एक वृक्ष है, और वहां उस वृक्ष से उसको बहुत सुंदर सुगंध आ रही है, चंदन का वृक्ष है। तो फिर से वो उस वृक्ष के नजदीक चला जाता है और कहता है आपकी तो सुगंध इतनी सुंदर है, मुझे थोड़ी सी आपकी सुगंध दे दोगे? तो कहता है ठीक है। तो फिर से एक्सचेंज होता है, वो सुगंध ले लेता है और अपनी फ्रेशनेस दे देता है। ऐसे ये ओस का बूंद जो है धीरे 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 प्रारंभ करते करते वहां उस जो किला है जहां वहां वो मिट्टी के किले पर पड़ा था वहां के एकदम जमीन पर आ जाता है, नीचे आ जाता है। लेकिन अब काफी समय हो गया है और उस ओस के बूंद ने बहुत सारी बातों को, एक थोड़ा रंग भी ले लिया, थोड़ी सुगंध भी ले ली, मिट्टी से थोड़ा टेक्सचर भी ले लिया, ऐसे बहुत सारी चीजें लेकर उसने अपनी फ्रेशनेस दे दी है, शुद्धता दे दी है। तो अब वो अपने आप को देखना शुरू करता है तो वो मिट्टी का बूंद बन चुका है, नहीं वो ओस का बूंद तो नहीं रहा, अब तो मिट्टी का बूंद है, बहुत हैवी है। तो अपने आप को देखता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है कि मैं इतना हैवी कैसा हो गया और मेरे में इतनी मिट्टी है, मेरी शुद्धता भी नहीं है, मैं अच्छा नहीं हूं। तो अपने प्रति वो हीन भावनाएं आनी शुरू हो जाती है, वो बहुत दुखी हो जाता है और अब उसे अपनी यात्रा, जीवन की यात्रा अच्छी नहीं लगती है। तो वो आगे चल रहा है फिर भी अपने जीवन में, और फिर उससे फिर से कोई चीज आकर्षित करती है, और इस समय उसको लगता है कि ये चीज तो बहुत अलग है, क्योंकि एक बहुत सुंदर हीरा है और ये हीरा एक वृक्ष के ऊपर चमक रहा है। और फिर वो ध्यान से देखता है तो वो हीरा क्या है, वो एक दूसरी सुंदर ओस की बूंद है जो बहुत शुद्ध है और जिससे वहां सूर्य का प्रकाश फैल रहा है और बहुत सुंदर उसकी चमक है, हीरे जैसा वो चमक रहा है। तो ये मिट्टी का बूंद जो है वो उसे कहता है कि आप तो कितने सुंदर हो, आप कितने शुद्ध हो, आप तो हीरे जैसा चमक रहे हो। तो ये जो शुद्ध ओस का बूंद है वो उसे कहता है कि नहीं, आप भी मेरे जैसे हो। तो ये मिट्टी का बूंद कहता है कि नहीं, मैं तो आपके जैसा नहीं रहा, मेरे में तो बहुत मिट्टी है, मैं तो बहुत ऐसा हैवी हो गया हूं, मेरा जीवन तो ऐसा अच्छा रहा ही नहीं। तो ये जो शुद्ध उसका बूंद है वो उसको बहुत प्यार से समझाता है कि वास्तव में तुम भी मेरे जैसे हो, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने अपनी यात्रा में बहुत सारी चीजें जो तुम्हें आवश्यक नहीं थी, तुम्हें आकर्षित तो जरूर कर रही थी लेकिन बहुत आवश्यक नहीं थी, वो चीजों को तुमने अपने जीवन में शामिल कर दिया। अब क्या करो, ये जो भी चीजें हैं अनावश्यक, ये चीजों को वापस दे दो। तो अब ये तो कहानी है ना, इसलिए ये मिट्टी का बूंद फिर से अपनी यात्रा में पीछे चला गया और धीरे धीरे उसने क्या किया, जहां से भी उसने वो चीजें ली थी वो वापस उसको देना शुरू किया, और अंत में वो क्या बन गया, फिर से वो एक बहुत शुद्ध उसका बूंद बना। अर्थात हम देखते हैं ये कहानी जो है हमें क्या प्रेरणा देती है, क्या शिक्षा देती है, क्या शिक्षा देती है जी, हमारी ओरिजिनलिटी क्या है। जब हम कहते हैं ना कि हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, नहीं तो बहुत सुंदर गीत भी हम कहते हैं कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो ईश्वर की तो हम बहुत सुंदर महिमा करते हैं कि वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, पवित्रता का सागर है, शक्तियों का भी सागर है। तो हमारी ओरिजिनलिटी भी कैसी होगी? हम भी तो उसके जैसे ही होंगे ना. क्रिश्चियनिटी में भी कहा गया है गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, परमात्मा ने हमें अपने जैसा बनाया, उसके बच्चे ना, तो उसके जैसा बनाया. तो हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है, मूल स्वरूप है, वो कैसा है? बहुत शुद्ध है, बहुत श्रेष्ठ है. तो स्वसशक्तिकरण अर्थात अपने मूल स्वरूप को अनुभव करना, उस मूल स्वरूप में फिर से आ जाना. नहीं, क्योंकि आप तो हैं ही रक्षक. तो हम देखते हैं कि जब हम अपने मूल स्वरूप को अनुभव करते हैं, उसकी शुद्धता, उसकी श्रेष्ठता को अनुभव करते हैं, तो फिर राजयोग के द्वारा धीरे धीरे हम अपने उस मूल गुण और शक्तियों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे उसका रक्षक बनना है, ये सीख लेते हैं. नहीं, जैसे देश की आप रक्षा करते हैं ना, ऐसे हमें क्या करना है, स्वयं की भी रक्षा करना है. तो हम राजयोग के द्वारा एक बहुत सुंदर जीवन शैली सीख लेते हैं कि सारे दिन में कारोबार करते हुए, व्यस्त रहते हुए, अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए, अपने परिवार के भी जिम्मेवारियों को निभाते हुए, आत्मा अपने स्वयं के गुण और शक्तियों की रक्षा कैसे करे, उसकी जो शुद्धता है, उसकी जो श्रेष्ठता है, उसकी जो अंतर की प्योरिटी है, पवित्रता है, जो उसके शुद्ध मूल्य है, उसके अंतर के मूल गुण है, उसकी रक्षा कैसे करें? जरूरी है, जरूरी है, इसकी रक्षा करना जरूरी है. नहीं, जितना ही आज आप कार्य कर रहे हैं देश की रक्षा, वो बहुत जरूरी है. नहीं, उतना ही स्वयं की रक्षा भी जरूरी है, जरूरी है. तो यहाँ प्रोटेक्शन, यहाँ के दुश्मन कौन है? नहीं, आप तो रक्षा में हैं ही, तो आप तो जानते ही हैं कि कौन से हमारे जो भी एनिमीज है, उनसे आपको रक्षा करनी है. तो स्वयं की रक्षा किससे करनी, किससे करनी? नहीं जी, किससे करनी? अपने ही अवगुणों से. अच्छा, अपने ही नकारात्मक सोच से, अपने ही चिंताओं के सोच से. तो हमें अपनी भी रक्षा करनी है. तो स्वसशक्तिकरण अर्थात अपनी ही वो दिव्यता और सुंदरता को अनुभव करते हुए अपने आप को उससे हमेशा शक्तिशाली बनाकर अपने ही नेगेटिविटी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना. प्रोटेक्ट करना जरूरी है. नहीं, क्योंकि हम देखते हैं बाहर के दुश्मन को फिर भी हम समझते हैं, जानते हैं और उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. कहा जाता है कि रक्षा तब कर सकते जब आप दुश्मन कहां से अटैक करता है उसको आप जानते हैं. नहीं, उसको आप नहीं जानेंगे तो क्या होगा, डिफिकल्ट है. तो ऐसे ही यहां आपको ये 3 दिनों में बहुत सुंदर समझ भी मिलेगी और राजयोग के द्वारा एक बहुत सुंदर एक स्वयं की एक यात्रा होगी जहां आप समझ पाएंगे कि हमें अपने ही नकारात्मक भावनाओं से अपने को रक्षा करनी. हमारा कोई एनिमी बाहर से नहीं है, हमारी अपनी नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस है. तो हम अपने मन के कैसे मालिक बनकर अपने आप की रक्षा कैसे कर सकते हैं, तो उस रूप से एक बहुत सुंदर यात्रा है और आप बहुत लकी हैं कि आपने यात्रा आरंभ कर लिया है. नहीं, आरंभ हो गई है यात्रा. नहीं, यह जर्नी शुरू हो गई है और इस जर्नी में हर दिन जो आप यहाँ स्पेंड करेंगे, हर समय, हर घंटा आपको जो मिलेगा, बहुत सारी बातें भी मिलेगी और बहुत अच्छा टाइम आपको बीच में मिलेगा जहाँ आप साइलेंस में, यहाँ के वातावरण में बहुत सुंदर हमारे मेडिटेशन रूम्स हैं, जो एक रूम हमारे यहाँ के मेडिटेशन हॉल के ही नजदीक है, एक डोम है, एक यहाँ पीछे भी हमारा बहुत सुंदर, ऊपर सीढ़ियों से आप जाएंगे तो वहां भी एक मेडिटेशन रूम है. तो ये मेडिटेशन रूम में जब समय आपको मिले, थोड़ा समय, 5 मिनट, 10 मिनट, जो आप बातें सुन रहे हैं उसको क्या करना, उसको अनुभव करके, इंटरनलाइज करके, उसको आप कैसे अपने दैनिक लाइफ में इसको इंटीग्रेट करेंगे, उसके लिए आप जरूर थोड़ा विचार देना, थोड़ा अपने लिए योजना बनाते जाना. हो सकेगा? पॉसिबल है, पॉसिबल है. तो आपको ये टाइम मिलेगा, आप इसको यूज करना. जितना आप इसको डेली लाइफ के साथ जोड़ेंगे और कनेक्ट करते जाएंगे सुनते सुनते ही, तो क्या होगा, फिर जब आप कारोबार में फिर से जाएंगे तो इसको यूज करेंगे. तो हम फिर डेली लाइफ में इसका लाभ जो है अनुभव करेंगे, क्योंकि जैसे आप ये मेडिटेशन से आप कोई लाभ महसूस करेंगे ना, इससे आपको कुछ अच्छा एक्सपीरियंस होता जाएगा, तो क्या होगा, वो मोटिवेट आपको करेगा, फिर आप इसको कंटिन्यू करेंगे। जिससे हम कोई अच्छा अनुभव करते हैं उसको हम कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो एक्सपीरियंस होता जाएगा अपने आप इसको फिर अपने लाइफ में एक जीवन शैली के रूप में अनुभव करेंगे। ठीक है, तो आपको ये बहुत सुंदर 3 दिन मिले हैं और ये 3 दिनों में आप अपने साथ वो साइलेंस का टाइम एंजॉय कर सकेंगे। अब 2-3 मिनट के लिए एंजॉय करें साइलेंस का टाइम। तो हम अपने साथ बैठेंगे, अपने आप के साथ बात करेंगे, अपनी वो सुंदरता जो है, ईश्वर ने हमें जो जैसा श्रेष्ठ और सुंदर बनाया है उस सुंदरता को महसूस करेंगे। बहुत सुंदर एक इंस्टेंस है जहां हम सुनते हैं, जो माइकल एंजेलो हैं, बहुत अच्छे स्कल्प्टर कहा जाता है, तो उसकी बहुत महिमा होती है, हर जब भी उसका कोई कार्य डिस्प्ले होता था तो उसकी बहुत महिमा प्रशंसा होती थी। तो एक बार कोई एग्जीबिशन में जब उसकी महिमा हो रही थी तो उसने एक बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा, वास्तव में जो पत्थर है उसमें सुंदरता, उसमें संपूर्णता समाई हुई है, मैं तो जो वेस्ट है ना उसको निकालता हूं। ऐसा है, स्कल्पचर वो बनाता था तो उसने कहा पत्थर के अंदर उसकी जो संपूर्णता है और सुंदरता समाई हुई है, मैं क्या करता हूं, सिर्फ जो एक्स्ट्रा पत्थर है ना उसको निकालता हूं। तो वास्तव में हम सब के अंदर परमात्मा ने, शिव बाबा ने बहुत सुंदरता, श्रेष्ठता, गुण और शक्तियों से हम हर एक आत्मा को भरपूर किया है। अब ये 3 दिन की यात्राओं में हमें क्या मिलेगा, बहुत सुंदर राजयोग के द्वारा हमें वो टूल्स मिलेंगे कि हम कैसे जो वेस्ट बातें हैं ना, जो नकारात्मक बातें हैं जिससे हमने अपने जीवन की ऊर्जा को घटाई है, वो कैसे हम निकाल सके। तो वो अंदर की वो सुंदरता को, वो दिव्यता को हम महसूस करेंगे। तो 2-3 मिनट के लिए हम अपने आप के साथ ऐसा सुंदर टाइम स्पेंड करेंगे। तो 2-3 मिनट के लिए हम फिर से अपने मन को अपने आप के पास ले जाते हैं। कुछ समय के लिए अपना ध्यान आसपास के वातावरण से निकाल अपने आप को देखते हैं। जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें अपना ये शरीर, स्थूल नेत्रों से दिखाई दे रहा है। ये शरीर भी ईश्वर ने दिया हुआ साधन है। इस शरीर को चलाने वाली प्रकृति के बीच हम उस सुंदर ऊर्जा को देख रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ लाइट को मन की आंखों से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। मैं आत्मा ब्रुकुटी के बीच विराजमान हूं। मन की आंखों से अपने आत्मिक सुंदरता को देख रहे हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति की ऊर्जा को चारों तरफ प्रवाहित कर रहे हैं। अंतर के नेत्रों के द्वारा इस सुंदर लाइट को देख रहे हैं, जिससे शांति के वाइब्रेशंस सारे शरीर को प्राप्त हो रहे हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मुझ आत्मा का नेचुरल स्वभाव है। इस शांति की महसूसता में मुझे कितना हल्कापन महसूस हो रहा है, कितना लाइट हूं मैं, रिलैक्स्ड हूं। शांति की महसूसता ये मेरा निज स्वभाव है। मुझ आत्मा में ये शांति की ऊर्जा भरपूर संपन्न है। शांति की मनोस्थिति में मैं उस शांति के सागर ईश्वर पिता को याद कर रहा हूं। कुछ समय के लिए मन को उस परम शक्ति के पास ले जाता हूं। इस आवाज की दुनिया से की दुनिया में मन की आंखों के द्वारा उस लाइट की दुनिया को देख रहा हूं। जहां शांति का सागर परम ज्योति स्वरूप ईश्वर विराजमान है। उस सुप्रीम लाइट के समीप आते ही उस शांति के सागर से उस शांति की लहरों को महसूस कर रहे हैं। मन भी बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। जो भी सूक्ष्म चिंताएं हैं, बोझ है, सारा मन का बोझ उस ईश्वर को सौंप कर बिल्कुल हल्के हो गए, लाइट हो गए। उस शांति के सागर की हल्केपन की ऊर्जा मन को शक्तिशाली बना रही है। रिलैक्स होकर, निश्चिंत बनकर हम फिर से अपने आप को यहां इस वातावरण में महसूस कर रहे हैं। मन से अपने आप को फिर से इस हॉल में देख रहे हैं। आंखें अगर बंद है तो आंखों को खोल देते हैं। अपने आप को उस शांति की गहराई से भरपूर महसूस कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति। तो बहन दीपा का बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हमारी थकान को समझते हुए एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन को उतने ही रोचक रूप में इंटरेक्शन में बदल दिया। तो तहे दिल से हम एक हाथ की ताली बजाएंगे ऐसे। या थैंक यू सिस्टर फॉर अंडरस्टैंडिंग अवर है ना स्टेट ऑफ माइंड।